शरणम हरि 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 शरणम
देखो भाई, मैं आप जिसकी बातें बताता हूँ उनमें आपके कोई शंका पैदा होती ना तो वो ठीक रहे, उससे कुछ बात निकलेगी। हिंदुओं से कहा भाई, पारमार्थिक साधना और लोगों सारी में दो फायदा है। उन्होंने मोगी ने बात ये बताई कि संसार की उत्पत्ति होने पर संसार की सत्ता है और परमात्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है, तो वो स्वतः सिद्ध की प्राप्ति में अन्वेषण हो सकता है, निर्माण नहीं होता। अब उसके लिए जड़ साधन नहीं होता, उत्पन्न नष्ट होने वाले के लिए साधन जड़ होता है, उसमें जड़ का त्याग होता है। आध्यात्मिक साधना में जड़ का त्याग होता, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा चेतन का प्राप्ति होती है। विचार में जड़ के द्वारा चिन्ह तो प्राप्ति कम संसार का कोई गौरव साधन उसके साधन लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात जो अपने शास्त्रीय दृष्टि से कही जाए तो जितने कारक है ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान आदि कर्म जितने अधिकरण है, ये अधिकरण ये कारक वास्तव में क्रिया के कारक है, क्रिया करने से। अरे परमात्मा तत्व तो क्रिया से अतीत है, पदार्थों से अतीत है, तो कर्म निरपेक्ष कहने में लोग डरते हैं तो कर्म निरपेक्ष साधना कैसी होगी, तो कर्म सापेक्ष साधना चिन्मयता भी कैसे होगी। ये तो क्रियाओं में ही भी साधन है ना, सब कारक होता है, कारक तो करने वाला होता है, तो करने वाला क्रिया का करने वाला कारक है कैसा। अब क्रिया संबंधी कारको तो क्रिया के कारण है और क्रिया का जनकत्व होकर के कारक बने तो भी क्रिया के साथ में, तो संबंध तो क्रिया के साथ ही रहा है, तो क्रिया के साथ संबंध क्रिया से ऊंचा उठने में तो उपयोगी हो सकता है, वो साक्ष ऊपर उठा नहीं जाएगा। जड़ सा भी जाना उसे तो जड़ से ऊंचा कैसे उठेगा, वो क्रियाओं की आवश्यकता जिस साधन के लिए होगी वो क्रिया से ऊंचा कैसे उठेगा, क्रिया की सहायता होगी उसकी क्रिया की बड़ी सड़क कैसे। समझ बताओ कैसे पढ़ाई की नहीं है, हम जो काम करते हैं ना, हम कोई भी काम करें तो कर्म करने के जो औजार है उनकी अपेक्षा उनसे ही तो करेंगे, बोलेंगे तो जबान से बोलेंगे, देखेंगे तो आंखों से देखेंगे, कहाँ सुनेंगे तो कानों से सुनेंगे, ऐसे चले तो हम पैरों से चलेंगे, लेन देन के हाथों से करेंगे। अब इनके बिना काम कैसे करेंगे, तो परमात्मा तत्व के बराबर तो परमात्मा तत्व क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली चीज नहीं है। जो दो दिन विषय चल रहा है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति संसार की वस्तु प्राप्ति में कायदा दो है, क्यों दो है कि उनमें जो करने से होगा क्रिया साध्य है ये। पहले से ही है उसकी प्राप्ति के लिए क्रियाजन्य साधन कैसे होगा। क्रियाओं से ऊंचा उठने के लिए क्रियाएं उपयोगी हो सकती है, फिर भी ऊंचा सर्वथा उठा नहीं सकती क्रियाएं। ये थोड़ी बड़ी बात है। क्रिया से ऊंचा कैसे उठा रहेगी, क्यों क्रिया में हो जाने की आवश्यकता होगी, जिनकी आवश्यकता होगी वो कैसे करेगा उनको। जैसे सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद तो सीढ़ियों का त्याग हो जाता है, सीढ़ियों में सीढ़ियों का त्याग कैसे करोगे। सीढ़ियों तो उपयोगी है, बड़ी बात है, जरूरी है। ऐसे क्रियाजन्य साधना जितनी है वो सबकी सब ही प्रकृति से ही होती है। प्रकृति से अतीत में क्रिया करना होगी। क्रिया और पदार्थ दो चीज है, प्रकृति है। तो पदार्थों से गुणातीत तत्व है, जो गुणातीत तत्व है प्राप्ति के लिए गुणों का त्याग उपयोगी होगा। गुणों की सहायता उपयोग कैसे होगी, गुणों से ऊंचा उठने के लिए गुण कुछ भी तब उपयोगी हो सकते हैं। सर्वथा गुणातीत होने के लिए गुणों की आवश्यकता कैसे होगी, गुणों के द्वारा गुणातीत की प्राप्ति कैसे होगी। आप बात करो, आप कोई बात जो मैं सोचो। जितनी साधना की प्रणाली है अभी उसमें प्राय करके गुणों के अंतर्गत ही है सब साधना प्रणाली। वो साधन प्रणाली गुणों से अतीत कैसे कर देगी। गुणों में दर्जा है तो रजोगुण तमोगुण है उसे उनका रजोगुण कहा जाएगा, रजोगुण सतोगुण आ जाएगा। तो सात्विक की विविधता जो गुणों के अंतर रह सकते हैं, पर सात्विक से अतीत में गुण कैसे करेगा। सात्विक सुख है वो आत्मबुद्धि प्रसाद एवं परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला है, और वो सुख पैदा होने वाला नहीं है। गुणातीत जो सुख है वो तो स्वतः सिद्ध है। सात्विकता है वो उसमें उपयोगी है, उपयोगी है सत्व का त्याग, न कि सत्वगुण। सत्वगुण तमोगुण लोगों से ऊंचा उठने के लिए काम की चीज है, पर गुणातीत होने के लिए सत्वगुण कैसे होगा। सत्वगुण साधना होगी तो सत्व का त्याग कैसे होगा। सत्वगुण से हम गुणातीत होंगे तो सत्वगुण का त्याग कैसे करेंगे। सत्वगुण तो हमारा सहायक है, उसका त्याग कैसे होगा। अगर सत्व का त्याग नहीं होगा तो गुणातीत कैसे होगा। बारीक बात है थोड़ी। तो प्रकृति के द्वारा प्रकृति से अतीत की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकृति के त्याग के द्वारा प्रकृति की अतीत की प्राप्ति होगी। अंतिम साधन होगा जिसमें अपने कर्ण निरपेक्ष कहने में भी लोग हिचकते हैं, डरते हैं। कर्ण निरपेक्ष क्या है, संपूर्ण कारकों से निरपेक्ष है वो। कार्य जितना सब कैसे प्रकृति में है, कर्तृत्व नहीं है उसमें, क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, संप्रदान नहीं है, अपादान नहीं है। ऐसे कैसे लगा हुआ अपादान संप्रदान हो, ऐसे आजादी के तो अधिकार नहीं, ऐसे अधिकार नहीं हो। कार्य कहना था उनमें चार तो क्री धातु के है, दो दा धातु के है, कर्ता कर्म कर्ण अधिकार, संप्रदान है अपादान, संप्रदान देना है अपादान है, ये हुआ। तो प्रकृति से अतीत तत्व है, उनमें इनका त्याग करना होगा। तो पहले से ही ये जानना है कि हमें संसार से ऊंचा उठने के लिए संसार की जरूरत है। तो संसार में संसार की जरूरत है, संसार से ऊंचा उठने के लिए। अगर ही अंत में संसार की जरूरत नहीं, संसार के त्याग की जरूरत है। तो दोनों लोग कायदा कैसे होगा? प्राय सब नहीं मान रखा है वही साधन, जैसे लौकिक साधन है वैसे ही ये औजार ही पारमार्थिक साधन में कारण है। ऐसे ही होगी प्राप्ति, ऐसी बात जैसी बैठी है भीतर पुस्तकों में, ऐसी मिलती है सत्संग में, ऐसी मिलती है व्याकरण में और शिक्षा में, ऐसी बात मिलती है। पर हाँ तो फिर सीधे छूटेगी तभी थे ऊपर पहुंचेगा, सीढ़ियों को पकड़े ऊपर कैसे पकड़ेगा? हाँ तो सीढ़ियों के द्वारा तो हम नहीं करते, सीढ़ियों के द्वारा सीढ़ियों से ही ऊंचे उठे गए। सीढ़ियों के द्वारा सीढ़ियों से ऊंचा उठने के लिए उपयोग में सीढ़ियां आ जाएगी, मैं सीढ़ियां से अतीत कैसे पहुंचेगी? सीढ़ियों को छोड़ना पड़ेगा। बताओ, अच्छा उपयोग है तो सीढ़ियों से चढ़ने के लिए सीढ़ियां उपयोगी है, ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां उपयोगी करने को सीढ़ियों का त्याग उपयोगी होगा। अच्छा सोचे छूटेगी चाहे स्वदेश छूटो और चाहे छोड़ो, परंतु सीढ़ियां उपयोग कैसे होगी? सीढ़ियां तो सीढ़िया में ही उपयोगी होगी। हाँ सिर्फ तरह वही होगा। तो गुणातीत होने के लिए जैसे तमोगुण को जीतो, रजोगुण से रजोगुण को जीतो, सतोगुण से मैं सतोगुण को जीतो, फिर वहां गुण के साथ में रहेगा। ये बात पहले से आदमी समझ ले तो अड़चन नहीं पड़ती, कभी मेरे ख्याल ही नहीं जाता। सत्ता जो होती है ना उत्पन्न होकर के होने वाली सत्ता है, उसमें ये सत्ता सबसे रहेगी, पर जो अनुत्पन्न सत्ता है उसमें ये सत्ता कैसे रहेगी? ये सत्ता का त्याग होगा। वो तो इनके भीतर हो गई ना, वो तो अस्थि के अंतर्गत आ गई ना, बजायते बजते अपक्षी थे विनिश्चित ये सब जाए थे कि बाद आई तो भाई तो बाद वाली तो इसके अंतर्गत तो आवेगी ही। जाए थे कि बिना अस्थि भी नहीं होगा, तो अस्थि के बिना अगर ही कैसे होगा, बढ़ से कैसे होगा?
ये अस्थि और वो अस्थि ये कैसे
ना उसे नहीं है। जाए थे अस्थि है, इस अस्थि को लेकर के बढ़ दे जो परिणमते विनाशे हो विदेशी ये सब उत्पन्न होकर के सत्ता है, उस सत्ता के अंतर्गत है ये सब।
और बाद की जो सत्ता है वो तो इसी सत्ता से ही सत्तावान,
उत्पन्न होने में सत्ता से ही सत्तावान, सभी सत्ता सगड़ी सत्ता उत्पन्न होकर के सत्ता के अधीन ही सब सत्ताएं हैं। जो स्वतः सत्ता है वो तो प्रकाशक है, वो तो उत्पन्न होने के भी सब प्रकाशक है, उत्पन्न होने पर सत्ता उसकी भी प्रकाशक है, आगे जितनी सत्ता है सबकी प्रकाशक है वो तो। पर उत्पन्न होने वाली सत्ता है वो सत्ता आगामी जितनी सत्ता है जिनके ऊपर वो सब प्रकाशक है वो।
जैसे जायते में क्रिया है, जैसे अस्थि में भी क्रिया है,
ऐसी क्रिया है, ऐसे अस्थि में बौद्ध में क्रिया है, हम दुग्रह में क्रिया है, अपक्षी में क्रिया है, मृत्यु में क्रिया है, तो परंतु ये क्रिया सत्ता कौन सी है, उत्पन्न होकर होने वाली सत्ता है, इसमें इन संपूर्ण सत्ताओं को एक सत्ता प्रकाशित करती है, अनुत्पन्न सत्ता वो एक साथ प्रकाशित होती है, ये एक साथ थोड़ी प्रकाशित होती है, होकर होने वाली सत्ता होने में थोड़ी प्रकाशित करेगी, होने से पहले है ही नहीं, वो सत्ता होने को कहने प्रकाश करेगी, कोई सत्ता ही नहीं है, और किस लाओ आप प्रकाशित होने पर ये इनके आपने कहा ना कि जायते अस्थि, जायते अस्थि है तो बल से भी अस्थि है, तो इन विकारों में ही अस्थि है, विकारों के सिवाय अस्थि लाओ आप जो उत्पन्न होने वाली सत्ता है, वो ठहर नहीं सकती महाराज, हो नहीं सकती, सत्ता सिद्ध सत्ता है, सत्ता सिद्ध सत्ता है, वो सत्ता तो सब में है, स्वभाव सत्ता है, वो सत्ता उसके सत्ता का भाव होता ही नहीं, कभी ना भाव भी देते है सत्ता, उसे भी बहुत सत्ता रहेगी, जायते के बाद सत्ता वो कैसे लेना चाहते हैं, अब इसमें कह रहे उसमें विचार करे तो इसमें बात पैदा होती है,
अब ये बात जो अच्छी होती सब क्रियाओं में लागू होता है,
सब में लागू होता है, क्योंकि प्रकृति का राज्य है, सब उत्पन्न होने के बाद प्रकृति का राज्य है सत्ता, तो ये सत्ता तो सब में लागू होगी, क्योंकि प्रकृति को छोड़कर है ही नहीं, प्रकृति के अतीत में जो सत्ता कैसे जाएगी, प्रकृति से अतीत सत्ता है वो तो सत्ता में सब में रहेगी, उस सत्ता से ये सत्ता है प्रकाशित, उस सत्ता को छोड़ते ये सत्ता में सत्ता ही नहीं, खुद में सुख में सत्ता थोड़ी है, ये बात मैं बहुत प्रश्न से कहा हूं, कहता हूं भाई इसमें तुम एक मत समझो, मैं इसे निषेध नहीं करता हूं, भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय चर्चा इसको मैं उपयोग समझता हूं, निषेध नहीं करता हूं, परंतु पहले से ये बात इसी पर ही डेरा लगा लो, इससे पहले इतना ख्याल करो कि आगे जाते हुए सब छूटेगा, पहले सीधी काम किए थे जाने के लिए पहली सीधी काम की है, तो शैली उस ऊपर ही बैठे तो कैसे तो मौसम हुआ, एक एक फिर छोड़ते जाओ, छोड़ते 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 अन्य सब छोड़ दोगे, सब छूट जाएगी, अगर नहीं छोड़ोगे तो ठेर नहीं पहुंच सकते, वहीं ठहर जाओगे, उसमें चिप जाओगे, हाँ सतोगुण पर यही बात है, इतनी बात जरूर है, सतोगुण को भी अनामय कहा, और वो पद भी अनामय है, पदंग अक्षण के अनामय हम कर्म जन बुद्धि होता ही कर्म तत्वा मन कृष्ण जन बंद बिनिर मुक्ता पदंग अक्षण के अनामय हम तत्व सत्व निर्मलत्वा प्रकाशक हम अनामय हम, तो ये अनामय है, निर्विकार है, अपेक्षा और वो है निर्विक्ष अनामय, अनामय दोनों है, दोनों फर्क है, ये सब विकार वाले हैं, इनका पैसा वो विकार है, और वहां कोई विकार नहीं है, अनामय दोनों बदलवाया है, दोनों कर्म जन फर्म त्यक्त्वा अनामय कदम गच्छन्ति, तो अनामय कर्म जन फलम त्यक्त्वा के अंदर के सिद्ध होना है, यहाँ
मालूम
चलता है व्यापक
है,
है
जो अस्थि दिया है
मैं कहूँ जायते भी सब में रहेगा, अस्थि भी सब में रहेगा, जो जो कारण है वो कार्य में सबके सब काम रहे हैं, पर उन सबको प्रकाशित करने वाले तो अनुत्पन्न सत्ता है। अब आपने जैसे कल पूछा आज भी कह सत्ता तो और की भी है, और कैसे जायते की भी सत्ता है, तो जायते की सत्ता है तो उत्पन्न होने वाली सत्ता में सत्ता है, तो इसे सिवाय सत्ता बताओ। खोज करने से इसमें बात पैदा होती है, क्या बात? अब दूसरे प्रसंग क्यों करे, इस प्रसंग को समझा रहे हैं, ये समझ नहीं है प्रसंग, ये बारीक बात है, ऐसी बात नहीं समझे, पढ़ाई जो की है कुछ समझे है इस प्रसंग में, जरूर वो समझ सके, हरी गाड़ी कैसे समझे, अब जो अंग्रेजी बोलता हूँ क्या समझे, अब सुने कैसे हैं, आपके काम नहीं पड़े ना, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भी आज बात पूछी अथवा शंका करी, तो उनको भी नहीं मिली है, अब आपको नहीं मिली क्या चीज है, तो कौन ना कहता है बाबा, परंतु छत पर सीढ़ियां छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ोगे तो छत पर नहीं पहुंच सकोगे, सीढ़ियों पकड़ा ही रहे छत पर पहुंच गया कैसे हो जाएगा, सीढ़ियां है तो सीढ़ी एक एक अपेक्षा सीढ़ी है, तो मैंने कहा जल्द से ऊंचा उठने के लिए जल शायद हो सकता है, मैं सुरक्षा आती दोनों के लिए जल शायद कर,
आपके सिद्धांत के अनुसार भजन साधन निकले माजी को किस भावना से करना
चाहिए, हमारे उस तत्व को उड़ाते हैं, तत्व को समझते हुए ये लक्ष्य लेने का ही मेरा तात्पर्य है, छोड़ने का तात्पर्य नहीं,
तो क्रिया ही है,
सब क्रिया ही है,
तो आप इस क्रिया को करते हुए क्या भाव रखें,
परमात्मा को प्राप्त करें,
क्रिया से तो कर नहीं सकते,
क्रिया से ही क्रियाओं से जो सीढ़ी से पहले सीढ़ी से ठेर सकते हैं, आप पहुंच नहीं सकते तत्व,
दूसरी सीढ़ी में पहले सीढ़ी का त्याग करें, तीसरी सीढ़ी में दोनों का त्याग करें, ऐसे क्रियाओं को उस क्रियाओं के त्याग के लिए ही क्रियाएं हैं,
त्याग के लिए ही है, तो ये मैंने आदमी कह दिया कि प्रकृति से अतीत होने के लिए प्रकृति की सहायता ली जा सकती है, वो सहायता के लिए प्रकृति से अतीत ये कर नहीं सकते, ये मैंने कहा
अनावश्यक क्रियाओं का क्या करने के लिए भजन साधन,
हाँ ये सब हाँ, तो मोह से ऊंचा उड़ने रजोगुण है, रोह से ऊंचा उड़ने सदोगुण है, इसमें भी एक विलक्षण बात और है, जैसे कर्म किए जाए तो कर्म कर्म जो यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि क्रिया है, ये क्रियाएं परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकती, पर इसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो गए तो ये सहायता हो जाए, एक कर्म होता है एक उपासना होती है, उपासना में चेतन का संबंध रहता है पहले से, तो चेतन का संबंध रहेगा तो ये क्रिया सब काम की हो जाएगी, उद्देश्य चेतन का रहेगा, इस वास्ते कर्म में उपासना में ज्ञान में ये फर्क है, कर्म है वो तो कर्म 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 में रहेगा, उपासना होगी ना तब, तो इस वास्ते सत्रहवें अध्याय में आया अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतं से यत, तो कृतं से यत में भजन स्मरण नहीं है, ये ज्ञान तप तीर्थ बता दी क्रियाएं नहीं है, वो असत हो जाएगा, परमात्मा के लिए कर तो कर्म के तदर्शी और शरीर की अभिनियत वो सत हो जाएगा, उद्देश्य हमारे साथ है ना गाड़ी
महाराज जी, कर्म करने में भी त्याग की भावना है।
हाँ
वो कर्म सत्य है,
सत होगा कर्म त्याग ही रहेंगे, सत्य होगी ही। त्याग तो संबंध विच्छेद है, वो तो त्याग तो स्वतः सिद्ध है, क्रिया और क्रिया के औजार के साथ में संबंध हमारा नहीं है, वो संबंध छोड़ने के लिए तो है, तो त्याग की भावना तो त्याग ही रह गया ना, ये क्या करेगी सर। इसलिए आज योगा कर्म सुकौशलम है, कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों के कुशल का नाम योग ये नहीं हो सकता, ये तो कर्मों कर्मों में रहेगा। वो दिन सुजन दाजी साथ ही थे बाजू बाजू है ना, अब आप लगा उठ कर कर्मों में कुछ होता तो कर्मों में ही रहा, कर्मों से उनसे कैसे कहो
आप लगा एक दौर है खूब कुशलता से चोरी करता है।
हाँ
तो वो योग बड़ी हो गया।
हाँ हम बोले
वो कुशलता से
ही बड़ी कुशलता से करता है, पता ही नहीं है आप जेब में से कहने का आप पता ही नहीं है,
कर्मों में कुशलता तो आ गई।
हाँ
योग बड़ी आ गई।
हाँ योग बड़ी हो गया नहीं, वो शास्त्र गेत कर्म भी कर्मों में ही रखेगा ना, कर्म से अतीत कैसे होगा, अतीत तो उद्देश्य परमात्मा इस बात से कर्म से तदर्थ ही हम सभी थे सत हो जाए, कर्म कर्म भी सत हो जाएगा, कर्म का नहीं सत्य होता, क्रिया तो आरंभ और अंत होता, कर्म का सत्य ही होता, तो उद्देश्य सत्य होने से वो भी ठीक हो जाएगा। नारायण 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 नारायण
Thank you.
शरीर है पहले वाला, परिस्थिति है पहले वाली, देश है पहले वाला, समय है पहले वाला, आपस में संयोग है पहले वाला, अवस्था है पहले वाली, है ही इनमें रहने की ताकत ही नहीं है। थोड़ा सा तो कम से कम विचार करो, आज रहने वाली है, मिटने वाली है, हर दिन मिट रही है। आप रखना चाहते हो और रहते नहीं। ये चिंता नहीं करी, ये जरूर है तो हरदम मिट गई है, हरदम मिटने के लिए ही पैदा होती है। जो संसार की परिस्थिति है वो सब की सब केवल मिटने के लिए ही पैदा होती है। मिटना उसकी उसका बहुत जरूरी है, टिकना तो है ही नहीं, मिटेगा ही है तो क्योंकि मिट ही रहा। और भगवान टिक ही रहे हैं, मिट रहे ही नहीं है। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा है, अब भी परमात्मा है, ये कभी मिट सकते ही नहीं। और संसार कभी टिक सकते ही नहीं। अब संसार की उलझने कैसे छूटे, क्यों छूट रही है रात में, एक बात। दूसरी बात, आप ख्याल करो तो संसार की उलझन में मूल क्या चीज है, मूल में संसार मेरे काम आवे, ये है उलझन की मूल। संसार मेरे काम आवे, मेरा कहना करे, मेरी आज्ञा में चले, मेरे अनुकूल बन जाए, सब मेरा कहना माने। इस जगह के मैं सब कहने मानू, सबकी कृपा, सबकी कृपा लू, सबकी मेहरबानी लू, सबकी सेवा करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, सबको आराम पहुंचाऊं, कैसे सबकी सेवा करो, ये भाव बना लो मिल जाएगी। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपये आता है, तो बाजार में गया और रुपये को बजा हुआ ऐसे, तो रुपये के पास रुपये आता है, रुपये रुपये आता है, जो एक दुकान पर रुपये के ढेर पर आ गया, वो उसे फिर उस दुकान पर गया, तो फिर रुपये के पास रुपया, रुपये के पास रुपये आता है, बात तो सच्ची है। तुम्हारे रुपये रुपये के पास गया कि नहीं, रुपये के पास रुपये आता है, बात तो सच्ची है। वो सुन मेरे पास आ जाए, तेरे पास कैसे आ जाए, क्यों मेरे पास आ जाए, यही उलझन है। और संसार में उलझन है ही नहीं। आप विचार करो और उलझन क्या है, मेरा कहना करो सभी, मेरे अनुकूल बन जाए सभी, ये कभी संभव है नहीं। अब असंभव को पकड़ लिया, अब कैसे मिटेगी। और आप अनुकूल बन जाओ, किनके जो सामने आ जाए, जिसमें सुगमता से आप कर सको, इतनी सेवा कर दो, ज्यादा नहीं। जितनी सरलता से सुगमता से आप उसके अनुकूल बन सको, उतने अनुकूल बन जाओ। और कुछ बात, उनका भला कैसे हो, वो प्रसन्न कैसे हो, सेवा करो।
तो उनकी सब मिल जाएगी, करके देख लो। एक कही दूसरे मानी गुड़ के दोनों ज्ञानी, और एक एक कहे दूसरे उठाती तो गुड़ के दोनों पापी। इस वास्ते सेवा करना ही हमारा काम है। देखो दो बात भी मनुष्य कर सकता है, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया की सेवा करना, दूसरा कर नहीं सकता। आप सेवा ले सकते हैं, पशुओं से ले सकते हैं, वृक्षों से ले सकते हैं, पौधों से ले सकते हैं, आप सबसे सेवा ले सकते हैं, परंतु सिवाय मनुष्य कोई सेवा कर सकता नहीं। और मनुष्य ही लेने लगे खाने लगे तो अब कौन सेवा करेगा बताओ। देवता जो अपनी ड्यूटी बजाते हैं वो सेवा दृष्टि से नहीं बजाते हैं, कर्तव्य आ गया जिम्मेवारी कर दी, वो अपना अपना काम करते हैं। सेवा केवल मनुष्य कर सकता और सेवा से उद्धार हो गया। जनता की सेवा करना, भगवान को याद रखना, एक दो काम है खास मनुष्य का है रखना। अगर ये नहीं करता तो मनुष्य पढ़ा ही नहीं है। ऐसा भगवान को याद किया और सेवा करना शुरू करा उनसे मिटी, क्योंकि उस दिन मिट जाए तो भगवान की सेवा करते, उस दिन सेवा करने के लिए हमारा जीवन है, केवल सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए ही मेरा जीवन है, उस दिन जाएंगे। उस दिन तो रहने में आती है, जन्म थोड़ी आती है। अपना स्वार्थ सिद्ध हो, हमारी बात सिद्ध हो, मेरे काम सब आ जाए, इसमें उलझन आती है। सब उलझन क्या है, एकदम शक्ति बात। गुरु जी कहते हैं कि श्राद्ध की बात बताओ, श्राद्ध तर्पण की बात है, बड़ी अच्छी है। जीते हुए माँ बाप की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, और जो चले गए हैं उनके लिए श्राद्ध करो रोजीना। श्राद्ध तर्पण रोजीना की वस्तु है, आपको इतना जाएगा क्या बोलता है, ये तो श्राद्ध एक पक्ष आता है, और एक पक्ष आता है नहीं, रोज जाना का है, पिंड देना और पानी देना बड़ेरों को, रोजाना नहीं, रोजर्ष है, पूर्णमासी है, दर्द की बात है, आदि दिनों में लेना। कम से कम, कम से कम, कम से कम सात पक्ष की तिथि और एक उनकी मरने की तिथि, दो दिन तो जरूर ही करना खास। अच्छा जानकार ब्राह्मण हो, उसके द्वारा विधि विधान से पिंड हो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें पार्वण प्रसाद है, एकोदृष्टि प्रसाद है, नैर्णारी विद्या है, वो ब्राह्मणों को समझो, ब्राह्मणों को कहने का अनुसार करो, अच्छे पंडित जानकार ब्राह्मण हो उसके द्वारा कराओ, उसका बड़ा पुण्य होता है। कितना वाक्य में चलते तरह जो आप कहोगे वो जान, वो ज्यादा चाहते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का लाड प्यार ज्यादा चाहता है, जैसे मनुष्य आदर सत्कार ज्यादा चाहते हैं, ऐसे ही साध्य श्रद्धा पूर्वक करो, आदर सत्कार से करो, पूरे मंत्र बोल के गोत्र उच्चारण पूर्वक करो, और श्राद्ध में भोजन गर्मा गर्म होता है। ऊष्मपान का नाम है गीता में, ऊष्मपान नाम है, पितर है वो गर्म गर्म खाते हैं। इस राज्य पितरों की तृप्ति गाय के दूध की खीर से ज्यादा होती है, खीर बहुत देर संधि नहीं होती, गर्म रहती बहुत देर, भाप निकलते निकलते पितर खाते हैं, तो श्राद्धों का भोजन ये करना चाहिए। लड्डू आदि करते हैं बढ़िया चीज करने के लिए, परंतु पितरों की तृप्ति जितनी गाय के दूध के खीर से होती है उतनी नहीं होती। खीर बढ़िया बनाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। श्राद्ध का अन्न खाने वाले ब्राह्मण ही है, लोगों ने समझा ब्राह्मणों ने खाने वाले क्या है। ब्राह्मणों के लिए ये नहीं तुम श्राद्ध का न खाओ, ब्राह्मणों के लिए कहते श्राद्ध का मत खाओ। और अब यजमान के उद्धार के लिए खाना पड़ेगा, प्रायश्चित करो, पहले से निमंत्रण पहले दिन दो और वो ब्रह्मचर्य रहे, खूब संयम से रहे, वो एक घड़ी भोजन करे, उसको दान दक्षिणा से राजी करो। विस्तार नहीं करना चाहिए श्राद्ध में, अनेकों को जिमाना दुनिया को देना करना नहीं। आश्चर्य जो विधियां है भोजन अगर बच जाए तो क्या करेगा, ब्राह्मणों को पूछ दो कि जैसे कर रहे, नहीं तो बाहर में नीची जाति को देना नहीं, जमीन में गाड़ दो उनको। तो बेकार क्या जमीन जमीन में गाड़ दे जाएगी। बेकार से कार आप समझते हो संतों में शासनों की वाणी ब्राह्मणों की वाणी है, वो कहना हो गया साकार हो गया, वो सार्थक हो गया, निरर्थक नहीं हुआ तो कह दिया जो कर दिया। किस्मत शास्त्र प्रमाण उनके कार्य अकार्य व्यवस्थित है, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। बंगाल में गुरुदास बनर्जी हुए हैं, बहुत बड़े जज थे, अंग्रेज लोहा मांगते थे उनका, अंग्रेजों के स्टेशनों में गए हैं, इलाहाबाद आया तो लोगों ने कहा कि ये भोजन नहीं करेंगे अंग्रेज में गाड़ी में, तो अंग्रेजों ने स्पेशल ठहरा दी वहां। वे गए त्रिवेणी जाकर हांडी लेकर उसमें भात बनाया, वहां संध्या आदि करके भात में खाकर फिर आए तब गाड़ी चली। एक दिन वे गंगा जी पर स्नान कर रहे थे, गंगा जी के पास में रहने वाली माताएं गंगा स्नान को जाती है, तो साथ में लड़का था, माँ बेटा आए, गंगा स्नान किया, देखा तो उनके जिनेऊ है, तो लड़के को कहा तुम पूछा तो आप ब्राह्मण हो ना, लड़के ने सागर पूछा तो हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण है तुम्हारा, एक आदमी पेटिया देना चाहिए, रसोई करा करके पीछे पालना करना चाहिए। द्वादशी का दिन था, एकादशी का व्रत करके आई थी माई, स्नान आदि किया, तोता आता है दाल है विश्वास सब दे, दो पैसा गिरा दिया, दो कमी समय भेजा तो ये ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को पेट या देने फेर करूँ पालन करूंगा। गुरुदास बनर्जी ने बहुत श्रद्धा से भक्ति से लिया, भक्ति से प्रेम से अला बेटा अला आदर से, क्या भूखे थे वो, बड़े दिल से आए थे, परंतु उनकी भक्ति से साधात्मा पर वैसे ही चलते थे। एक दिन उनको पालन करने वाली धाई आ गई, धाई माँ जो बच्चे को पालन करती है ना वो धामा होती है, वो आ गई। उसने सुना कि गुरुदास बने जी यहाँ बड़े जज हैं, गुरुदास माता देव मरिया है, मैंने बचपन में खेला है, गोदी में प्यार किया है, इसने माँ कितनी था तो गुरुदास जी से मिलो। आपने देखा होगा बंगाली माताएं स्नान करती है तो डुबकी लगा कपड़ा गीला ही टपकता ही रहे, जब कपड़े से जाती है गंगा जी में डुबकी लगाई गीले कपड़े से पहुंची, तो आई गोज में उतरने की सीढ़ियां चढ़ने की और उतरने की उतरने की चढ़ी चढ़ी, वो था कोई नहीं, दरवाजे पर गई, ये पहली गद्दियां पर बैठते थे, आजकल कुर्सियां हुई है, पहले अध्यापक है बड़े आदमी बड़ी गद्दी होती गद्दी पर बैठते थे, तो सामने गद्दी पर गुरुदास जी बैठे थे। वहां देखा था एक खड़े हो गए जाकर दंडों की वकील बड़े बड़े वकील बैठे हैं, मैं सामने देख गई लंबा पड़ करके मेरी माँ है, मेरी आखिरी माँ है, इन्हें मेरे गोद खिलाया है, किसी की ताकत ऐसी इतनी बड़ी गद्दी पर बैठा रह गए ग्रामीण माई बेचारी गीला कपड़ा है चपक रहा है साधारण अवस्था बूढ़ी तीन कर गुरुदास को गोद खिलाया दंडवत करी लंबा पड़ कर ये हमारी संस्कृति है। तो जीवे जितने सेवा करी मरने पर उनका साध्य करना दंड देना पानी देना पानी ठंडा भोजन को गर्म गर्म नदी से बहुत ओयासु शीतलासु विशेष बहुत गहरी नदी हो और ठंडी गंगा जी जैसी उसमें तर्पण करना तीर्थों में जा रहे तो वहां पिंड देना और पानी देना मुख्य काम है। और एक दूसरी बात आई है कि अच्छा जानकार पढ़ा लिखा पंडित मिल जाए वो कोई दिन हो उस दिन साध कर लेना, ऐसा जानकार बहुत कम मिलते हैं, आज ऐसे पंडित मिल गए तो उस दिन साध कर देना, कोई दिन वो कम नहीं हो, अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो विधि पूर्वक साध कर देना, बड़ी विधि है साध की। ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए निषेध नहीं कर साध में परीक्षा करनी ब्राह्मण की परीक्षा बताई, वहां जितना ही विद्वान हो अच्छा पंडित हो वेदों का जानकार हो ऐसा पंडित हो ऐसे पंडित की विधि करानी विचित्र बात है। पंडित क्या काम करता है कैसा है क्या मतलब आपको बात है ये ब्राह्मण काले रंग का भी न हो गोर वर्ण का हो अंग भंग न हो आयुर्वेद आज काम करने वाला न हो विद्या पढ़ने पढ़ाने वाला हो वेद पाठी हो रोजना संध्या गायत्री करने वाला हो जितना आपको मिल सके उत्तम से उत्तम ऐसा पवित्र ब्राह्मण को देकर के साध करना चाहिए जितना अच्छे से मिल सके अपनी दृष्टि से अच्छे से मिल सके और कहां से लाऊं। जब अच्छा पंडित मिल जाए तो उनसे प्रार्थना करेगा उसी साधु कर कोई तो तिथि वो कोई महीना हो कोई दिन हो ये दुर्लभ चीज है उसी दिन साधु कर दो। बड़ों को याद करो भाई सब संपत्ति आपको दे गए छोड़ गए उनका दिन भी आप मनाओ नहीं रोज ही ना उनको तर्पण करो श्राद्ध करो पिंड दो पानी दो ये खास काम तो श्रद्धा पूर्व करना चाहिए उससे कल्याण होता है जीव का। माँ बाप के नाम से पिंड पानी देते हैं तो माँ बाप ही राजी होते हैं इतना बात नहीं ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान सब राजी होते हैं। ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथों के अनुसार आप काम करोगे तो उनका लिखना कहना सार्थक हो गया सब प्रसन्न होंगे माँ बाप की सेवा करने से सब राजी होते हैं और माँ बाप की सेवा नहीं करता तो भगवान भी जल्दी राजी नहीं होते कि ये माँ बाप का ही नहीं बना हमारे कैसे बनेगा। माँ बाप की सेवा करो साध तर्पण करो खूब आदर से करो विशेष कैसे करो तो ब्राह्मण को पूछ कर ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रों पूर्वक ठीक करे अपने गोत्र का उच्चारण करके नाम का उच्चारण करके संबंध को उच्चारण करके उसे देखो उस दिन पितरों की तृप्ति होती है। आदर के भाव के शब्द होते हैं उन शब्दों से पितर तृप्त होते हैं जैसे बच्चे को ले लाड प्यार करो बच्चा राजी हो जाता है कि नहीं, तो बच्चे की खुराक लाड प्यार है, जो बड़ों का आदर सत्कार है उनकी खुराक। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो राजी हो जाएगा, पर अतिथि आ रहे उसका आदर करो, आसन दो, भोजन दो, आदर सत्कार खुराक है विशेष। इन्हीं देवता है उनका आदर सत्कार करो, आहुति दो, मंत्र बोलो। जितने ऊंचे दर्जे गए उतनी ऊंची ऊंची खुराक होती है, नीचे दर्जे की उनकी खुराक नीची होती है, ऊंचे दर्जे ऊंची खुराक। उनके कहने के अनुसार पाठ पूजन कर लो, उनके कहने की आज्ञा के अनुसार विधि विधान कर लो। पितर है तो ब्राह्मण हुए पहले वाले ऋषि मुनि महात्मा वे सब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। पाठ पूजन नहीं करता ऋषियों का ऋण रहता है हमारे सिर पर, हमारे लिए कितने भी बच्चा बना गए सात और, पर हम उनको पढ़े ही नहीं देखे ही नहीं, तो एक अपराध रहता। इस बात साध है तर्पण है कि विधान नहीं करो, तिथियां हुए उन तिथियों का पूजन ठीक तरह से, जो कुछ शास्त्र में कहा है उसी अनुसार काम करो। तस्मात शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य व्यवस्था या तो शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम्हें आ रहे। नारायण 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 नारायण। और सुना दे भाई सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम।
नीति भाद्रपद कृष्ण सप्तमी बुधवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 तदनुसार दिनांक 23 अगस्त 1989 को प्रातःकालीन 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा पर और प्रातः 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये दोनों प्रवचन हुए। राम
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे
हरे हरे राम हरे राम
राम
राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.